श्रोताओ, जबलपुर पूरी दुनिया में अपनी संगमरमरी चट्टानों के लिए मशहूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गुलामी के दौर में भी ये नगर एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ था, और यदि हम आज की बात करें तो संस्कारधानी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी महत्ता कायम किए हुए है। यहाँ केवल आयुध निर्माणियाँ ही नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार के यानी केंद्र शासन के कुछ ऐसे उपक्रम और अनुसंधान केंद्र हैं जिनके कार्यों और अनुसंधानों का सीधा प्रभाव राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, हम पर पड़ता है। यदि पर्यावरण और वन अनुसंधान की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। समाधि रोड से बरगी जाते समय बाईं ओर हमने इस संस्थान का प्रवेश द्वार तो देखा है, पर इसके अंदर क्या होता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने बात की TFRI ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जी राजेश्वर राव से। आप भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। राव साहब नमस्कार।
नमस्कार जी। नमस्कार
राव साहब, क्या उद्देश्य था इस संस्थान की यहाँ स्थापना का?
ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1973 में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के नाम से शुरू हुआ था, और ये संस्थान 1988 मतलब 1988 में ये पूरा इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा रीजनल जो हमारा मैंडेट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों स्टेटों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने जो रिसर्च के तौर पे जो भी उनको देना है वो देना है, उनको टेक्निकल बैक स्टाफिंग देना है। उसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स है जैसे ट्राइबल फार्मर्स है और फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज है उनका जीविका या लाइवलीहुड सपोर्ट कैसा इम्प्रूव किया जाए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें जो हम रिसर्च जो करते हैं उसमें ये है कि मेनली NWFP जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं उसमें कैसा सुधार लाया जाए, ताकि क्योंकि उसमें बहुत सारे जड़ों से निकलने वाले दवा होते हैं, तो जड़ उखाड़े तो ये आ जाएगा, पौधा उखाड़ना पड़ता है, तो पौधा उखाड़े तो पौधा मर जाएगा। तो उसके लिए सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग बोलते हैं, मतलब पौधा जिंदा भी रहे और हमें रूट्स भी मिलता रहे, कैसा हमने हार्वेस्ट करना है। और एक छाल का निकालते हैं, छाल से भी दवा मिलते हैं, वो छाल को निकाल दिए तो पौधा मर जाता है, पौधा ना मरे और छाल में निकले उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन किया है। तो इनके बारे में हम जो वो इकट्ठे करते हैं, जो आदिवासी लोग जो मेनली दवा वही लोग इकट्ठा करते हैं रॉ मटेरियल, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और जो हमने रिसर्च के तौर पर जो स्टैंडर्डाइज किया उनका ट्रेनिंग उनको देते रहते हैं, और ताकि वो भी जड़ी बूटी जो निरस्त ना हो और मेडिसिनल प्लांट्स मिलते रहे, मतलब पब्लिक को मिलते रहे, इसका भी एक है। और एक एग्रोफॉरेस्ट्री पे भी हम काम करते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री मींस ये जो अपना क्रॉप्स और फॉरेस्ट्री दोनों मिला के कैसा दोनों का समन्वय करके ज़्यादा फायदा उनको मिलता रहे, जो भी फार्मर्स है, ट्राइबल फार्मर्स है, अदर भी हैं, उसमें यह है कि दोनों का संतुलन करना है, क्रॉप्स भी मतलब पैदावार भी और ट्रीज भी, तो उसके लिए भी करते हैं। और एक बैम्बू का भी आजकल नेशनल बैम्बू मिशन है, बैम्बू मिशन में भी फॉरेस्ट्री और बैम्बू मिशन और क्रॉप्स इन तीनों को मिला के कैसे चलना है एग्रो फॉरेस्ट्री में, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। उसके अलावा एकोलॉजी डिवीजन है हमारे पास, एकोलॉजी डिवीजन में ये है कि मतलब वातावरण कैसा हम प्रोटेक्ट करें, आजकल क्लाइमेट चेंज का ज़माना है, क्लाइमेट चेंज में हम लोग कौन कौन से कैसे कौन सा ट्रीज लगाए ताकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो ज़्यादातर जो वातावरण प्रदूषण कार्बन से होता है उसको ट्रीज जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ट्रीज कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कार्बन जितना फास्ट ले ले वो वातावरण से लेके ताकि वातावरण प्रदूषण कम करे, उसके तरह कौन सा ट्री स्पेसीज हमने वो करना है तो वो भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है उनके लिए वाइल्ड लाइफ प्लान्स करते हैं, और माइनिंग वालों के लिए हम ट्रेनिंग भी करते हैं कैसा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है, कैसा वो करना है। और जो ये फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश मीन्स जो हम लोग ये विद्युत शक्ति मतलब जो करंट पैदा करते हैं उससे बहुत सारे फ्लाई ऐश आता है, राख बोलते हैं उसको, फ्लाई ऐश इंग्लिश में बोलते हैं, वो राख डिस्पोजल ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब कोयला जलाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बट वो जो राख बचता है वो राख डिस्पोजल बड़ा प्रॉब्लम है। तो किस तरीके के ट्री प्लांट्स लगा के ग्रास लगा के उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं और फ्लाई ऐश के ड्यून्स बोलते हैं उनको कैसा स्टेबलाइज करें वो भी हम कंसल्टेंसी देते रहते हैं।
राव साहब, कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो घटते वन क्षेत्रों के प्रति जो देश में चिंता है उसको बहुत कुछ हल करने के लिए आप कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वन का क्षेत्र बना रहे।
या हमारे यहाँ एक जेनेटिक्स पौधा सुधार विभाग भी है, जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें हम लोग अच्छे वेराइटीज डेवलप करने की तो कोशिश करेंगे। वेराइटी ट्री फॉरेस्ट में ट्रीज में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अच्छे उसमें से अच्छे जो प्रॉमिसिंग प्लांटिंग मटेरियल लग जाए उनको डेवलप करते हैं, जंगल से जाके वहाँ से ले आके फिर उनको प्रोजेनी ट्रेल में लगा के अच्छे नर्सरी स्टॉक डेवलप करने के लिए वो आइडेंटिफाई करके नर्सरी स्टॉक डेवलप करके इसको प्रॉमिसिंग प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हम इनको मुहैया कराते हैं, जो फार्मर्स है स्टेक होल्डर्स हैं उनको, वो मेन है हमारा। तो उससे हम यही सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे ट्री क्रॉप्स फॉरेस्ट में आए और उसका कार्बन सिक्वेशन ज़्यादा हो, ट्रीज़ का वो भी हो। हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का भी एक उमंग है, बायोडाइवर्सिटी में है कि सारे सस्टेनेबल मेंटेनेंस, मतलब जो हमारे जंगल में या हमारे जहाँ भी है हर किस्म का हो, जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, प्लांट्स हो या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी समतुल्य से सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए, ताकि सारे जीवराशि जिंदा रहे और सबका समतुल्य हो, इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं
जी।
तो बायोडाइवर्सिटी में भी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं और कंसल्टेंसी भी करते रहते हैं।
ये ट्रेनिंग किसको देते हैं आप?
ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स जो भी ट्राइबल्स है एंड फार्मर्स है, मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड उनके थ्रू अदर स्टेक होल्डर्स भी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं।
राव साहब, आपने सबसे पहले जब हमारी बात शुरू हुई थी आपने बताया था कि जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातीय समाज के लोग हैं, जिनका बहुत कुछ जीवन आधार वन होता है, वे वनों से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो वे वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें नष्ट ना करें, वे यथावत बने रहें और उनकी आवश्यकताएं ज़रूरतें भी पूरी होती रहें, तो क्या इसके लिए आप उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, या ये संस्थान वहाँ खुद जाता है?
दोनों तरीके करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कभी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे यहाँ से हमारे लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग और टेक्निकल ऑफिसर जाके वहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्राइबल्स का विलेजेस में भी देते हैं, और जो ट्राइबल्स आ सकते हैं उनको यहाँ भी प्रशिक्षण देते हैं
जी।
और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और ट्राइबल डिपार्टमेंट से हम समन्वय करके हम ट्रेनिंग देते रहते हैं
जी।
ताकि और ट्राइबल्स भी उनका मेन डिपेंडेंस उसी में है
जी।
तो वो भी समझ जाते हैं कि उनका जीवन उन्हीं के ऊपर आधार है, अगर वो सस्टेनेबली मैनेज करे तो उन्हीं को फायदा होगा, ये बात वो समझते हैं
जी।
बट उनको पता नहीं होता कि कैसा करना है, उसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, अदर ट्राइबल डिपार्टमेंट के थ्रू हम उनका मदद करते हैं प्रशिक्षण देके
जी। कुल मिलाकर देश में ऐसे कितने संस्थान हैं?
हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च यूनिट है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन करके डेहराडून में है
जी।
ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, इसके अंडर 9 इंस्टीट्यूट्स है हमारा ICFR के अंडर। ये जबलपुर में TFRI है, डेहराडून में FRI है, RFRI करके वहाँ जोरहट में है, और कोयम्बतूर में IFGTB करके है, शिमला में HFRI करके है, IWST करके बेंगलोर में है, और ये हैदराबाद में IFB करके इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, रांची में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा 9 संस्थान है। 9।
राव साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इस संस्थान में कुल कितने विभाग हैं जहाँ अनुसंधान कार्य होते हैं?
हमारे यहाँ कुल 5 विभाग है जिसमें अनुसंधान होता है, एक तो एग्रोफॉरेस्ट्री सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक डिवीजन है, एक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी डिवीजन है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक डिवीजन है जो कीड़ा पैथोलॉजी से डील करता है, और एक एक्सटेंशन डिवीजन है जो किसानों के साथ, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास हमारी जो रिसर्च वो डेवलपमेंट है उनको उनके स्टेक होल्डर तक पहुंचा जाता है
जी।
और एक जेनेटिक्स डिवीजन है जो उच्च किस्म के पौधे तैयार करने में मदद करते हैं।
यूँ तो आपने बताया कि आपका कार्यक्षेत्र 3 राज्यों में है, लेकिन यदि मैं जानना चाहूँ कि जबलपुर के आसपास भी बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, डिंडोरी में, मंडला में, तो ये किस प्रकार का है और क्या इसका क्षेत्रफल घट रहा है, यदि हाँ तो क्यों?
नहीं, फिलहाल तो ऑल इंडिया का लेवल पे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया था, ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है फॉरेस्ट्री, डिंडोरी इधर भी बढ़ रहा है। अभी गवर्नमेंट का जो, मैं मानता हूँ कि जितने पौधे लगाते हैं उतने बच नहीं पाते, उसका कई कारण है, पानी नहीं मिल पाता, मैनेज नहीं कर पाते, बट उसमें जितना भी बच रहा है उससे बढ़ ही रहा है, और पब्लिक में भी अभी अवेयरनेस आ गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस ज़रूरी है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रही है, तो हमें ये हो सकता है, तो इसलिए पौधा एंड ट्रीज लगाना ज़रूरी है, तो अवेयरनेस तो आ रहा है, तो इसमें डेवलपमेंट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कर रही है, और हमसे भी संपर्क करके हम लोगों से भी जो भी टेक्निकल बैकस्टपिंग चाहिए वो लेते रहते हैं
जी। सर, यदि मैं पूछूं कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक इस संस्थान की क्या उपलब्धियां रही हैं, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं?
इस संस्थान की मेन उपलब्धि है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसा करना है, और बायोडाइवर्सिटी है क्या यहाँ पे, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पहले उड़ीसा भी था यहाँ पे, तो इन चारों स्टेट में बायोडाइवर्सिटी पोजीशन क्या है वो भी हम लोगों ने किया है, और इनका जो हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स, मतलब सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स ऑफ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मेडिसिनल एरोमेटिक, जो जड़ी बूटी है, उनका सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग वो भी किया हम। जेनेटिक्स डिवीजन का ये काम था कि अच्छे अच्छे वो प्लस ट्री सेलेक्ट करके, वो ट्रीज का यहाँ प्रोजेनी ट्रायल्स करके उसमें से अच्छे प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांट, QPM बोलते हैं उनको टेक्निकल टर्म्स में, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई किया है हमने। एंड माइन रिहैबिलिटेशन में भी हमने बहुत काम किया है, उनका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किया है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, जैसे जंगल में पैदावार में जो क्रॉप्स में तो हम प्लांट प्रोटेक्शन आप दवा छिड़क के कर सकते हैं
जी।
पर जंगल में दवा छिड़कना, बहुत पैमाने पे दवा होना चाहिए, उसको छिड़कना भी दिक्कत है
जी।
तो हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं, मतलब दूसरा जीविक उस प्राणी से इसको कंट्रोल करना
जी,
जो बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं
जी।
वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में काफी जो साल पेस्ट है, दूसरा टीक का पेस्ट है, इन सबको हमने कंट्रोल मेजर्स हमने तैयार कर लिया था, सैनिटाइज कर लिया, एंड ट्राइकोगम्मा करके टीक के डिफोलेट्स के लिए हमने ट्राइको कार्ड्स भी सप्लाई करवा रहे हैं।
सर, लगभग 8-10 वर्ष पहले की बात मैं करूं तो मध्य प्रदेश के जंगल जहां साल के बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, साल बोरर नाम का कोई कीड़ा लगा हुआ था, तो क्या उसके उन्मूलन में भी इस अनुसंधान संस्थान का कोई योगदान है?
वो साल बोरर के लिए भी जो वो कंट्रोल मेजर्स है उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है हम लोगों ने, एंड वो सारे स्टेट डिपार्टमेंट जो भी है उनको हम अभी भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। हमारा म्यूजियम भी है, वहाँ भी हमने उनको लाइव स्पेसिमेंस रखे हैं, उनका कैसा कंट्रोल करना है क्या है, पूरा पैकेज हमने डेवलप करके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुहैया कराया
जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से कहा जाता है वन है तो हम हैं, और आप इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में आपसे मैं एक संदेश लेना चाहता हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, कॉमन मैन के लिए।
सामान्य व्यक्ति का जिम्मेदारी ये हो जाए, जैसा क्लाइमेट चेंज सारे महसूस कर रहे हैं, आम जनता भी महसूस करती है क्लाइमेट चेंज। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश तो उतना ही है, बट बारिश जो 10 दिन में आना था एक ही दिन में आ रहा है, इससे फ्लड्स आ रहे हैं। ये सब का ओनली अल्टरनेटिव अगर कुछ है तो फॉरेस्ट है, मतलब ट्रीज, ग्रोइंग ट्रीज। जितने आप ट्रीज ज़्यादा करेंगे वो एनवायरनमेंट को थोड़ा बचा के रहने में वो कर सकता है। तो इसमें सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तौर पर हर एक आदमी अपने अपने इर्द गिर्द में जो भी पौधा कर सकता है, दैट इज़ अ बेटर। इसमें एक वो कहावत भी है, वृक्षों रक्षति रक्षिता करके कहते हैं, अगर वृक्षों को हम प्रोटेक्ट करेंगे वो हमारे रक्षा करेंगे। इसलिए हर आदमी का सामाजिक दायित्व बनता है कि पेड़ पौधों को बढ़ाए। वो आजकल शहर में तो रूफ गार्डनिंग का भी वो आ गया
जी।
तो जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट तो ठीक है पौधा तो वो मुहैया कह रहेगा, सब कुछ करेगा, पर उसका प्रोटेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के बाद उसका प्रोटेक्शन कराना आम आदमी का रिस्पांसिबिलिटी होता है। जैसा कोई कॉलोनी है, कॉलोनी का रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि वो अपने कॉलोनी में पौधे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारी कामना है कि ये संस्थान नित्य नई सफलताओं को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी धन्यवाद है जी, श्रोताओं को भी धन्यवाद।